ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಾ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಿತ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ್ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ್ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಾಸದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತವೃಂದ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೋ ಹಮ್ಲೋಗ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದೂಸರಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾತ್ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಪೇ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ. ತೋ ಅರ್ಜುನ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಹೇ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋ ಪಹತ್ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಃ ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಸ್ಯಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ. ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं. अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें. चैप्टर वन भगवद्गीता, उसमें अर्जुन ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए और अभी भी हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय के छठे श्लोक तक अर्जुन बहुत सारे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि, और अर्जुन ज्ञान वैराग्य यू नो उदासीनता ये तितिक्षा सारे जो लक्षण है, सारे जो गुण है उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं. और अर्जुन इन्हें पहले बोला, जब भगवान ने बोला क्लैबियम, तो अर्जुन ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं अपने गुरु के प्रति अपराध करने से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर रहा. सो भगवान ने कहा फाइन ओके, अब आप ऐसा कह रहे हो तो ठीक है. लेकिन अब अर्जुन बहुत ज़्यादा, उसने सारे तर्क देने के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, कुछ कंक्लूड नहीं कर पाया, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही. लड़ता हूँ तो प्रॉब्लम है, नहीं लड़ता हूँ तो प्रॉब्लम है, करूँ तो क्या करूँ. सो अर्जुन ने इस श्लोक में, सातवें श्लोक में अर्जुन ने ये मान लिया कि कार्पण्य दोष, कि मैं दुर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मैं कृपण हूँ, बात समझ नहीं पा रहा. कृपण और असो दो तरह के व्यक्ति हैं, कृपण और ब्राह्मण. और प्रभुपाद तात्पर्य में कोट कर रहे हैं बृहद आरण्यक उपनिषद 3:8 क्या रेफरेंस है, हिंदी में क्लियर नहीं हो पाता. 3:8:10 प्रभुपाद कोट कर रहे हैं और प्रभुपाद बता रहे हैं कि uh, यो वा एतत् अक्षरं गार्गी अविदित्वा स्माल लोकात् प्रति सकृपणा, कि जो कृपण वह है जो मानव जीवन के समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो ये कृपण है। और ब्राह्मण की जो परिभाषा दी गई है, यह एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्माल लोकात् प्रति स ब्राह्मणा, कि जो विदित्वा जो जान लेता है, जो समझकर ज्ञान से बात को समझ लेता है, वो व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रति इस संसार को अस्माल लोकात प्रति इस संसार को छोड़ता है, वो ब्राह्मण है। तो जिसके पास नॉलेज है वो ब्राह्मण है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो भी उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, उसको कृपण या क्षुद्र या दुर्बल व्याकुल व्यग्र उसको बोला जाएगा। और प्रभुपाद तात्पर्य के शुरू में ही बोल रहे हैं कि कदम कदम पर प्रॉब्लम्स हैं, कदम कदम पर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि करें तो प्रॉब्लम है, नहीं करें तो प्रॉब्लम है, जैसे अर्जुन अब प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर प्रॉब्लम्स हैं तो अब क्या करें। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हमें पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कर सके, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है कि हम गुरु की शरण लें। और अगर आप देखें तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शमित पाणी, कि हमें फायरवुड लेकर, फायरवुड मतलब जो आग जलाने की लकड़ी होती है ना, वे पहले सब यज्ञ वगैरह करते थे, तो ऐसा नहीं आप गुरु के पास लकड़ी लेकर जाओ, लकड़ी लेकर जाने का मतलब है कि सेवा भाव से जाओ। हाँ, तो सेवा भाव से हमें गुरु के पास जाना चाहिए, जिनको वेद की जानकारी है, वेद की नॉलेज है, और जो भ्रमण में स्थिर हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो बातों को समझ रहे हैं। और जाने का पर्पस क्या होना चाहिए, ज्ञान लेने के लिए। हाँ, तद विज्ञानार्थम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आखिर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या करूं। जैसे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो रामकेली में जब मिले चैतन्य महाप्रभु से पहली दफ़ा, तो उन्होंने अपने दांतों में तिनका दबाया। दांतों में तिनका दबाना बहुत ही विनम्रता का लक्षण चिन्ह माना जाता है। हाँ, सो दांतों में अगर तिनका दबाया आप बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि जैसे ही आप बोलने के लिए मुंह खोलोगे तिनका नीचे गिर जाएगा, नहीं। सो तिनका मुंह में दबाना बहुत ही विनम्रता का लक्षण है। और उन्होंने अपने गले में पट्टा बांधा ये दिखाने के लिए कि हम कुकुर हैं, हम कुत्ते के समान हैं, और हम एक स्वामी की तलाश कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे स्वामी बन जाए। तो उन्होंने दूर से प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला इधर आ जाओ मेरे पास, आगे आ जाओ। तो रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सामने गए, तो उन्होंने बोला, बोलो क्या बोलते हो भाई, क्या चाहिए आपको। तो सो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप प्लीज़ हमें बताएं हम कौन हैं, हम इस संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं, है ना। सो ये राइट एटीट्यूड है। और जब तक हम गुरु की शरण लेने की सबसे जो पहली क्वालिफिकेशन, सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है, ये रियलाइज करना, ये समझ लेना कि हम लोग दुखी हैं। क्योंकि जब तक हम ये रियलाइज नहीं कर लेंगे कि हम लोग एक्चुअली में काफी दुखी हैं, इस संसार में कुछ बात बननी रही है, तब तक जब तक हमें होप रहेगी तब तक हम गुरु की शरण नहीं लेंगे। जैसे द्रौपदी के प्रसंग से हम देखते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने सबको आवाज लगाई, सबको गुहार लगाई और धृतराष्ट्र तक को बोल दिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सबको उन्होंने बोला, अपने पांचों पतियों को द्रौपदी ने पुकारा, भैया बचाओ मेरे को। कुछ बात नहीं बनी, फिर उसने अपनी ताकत भी लगाई, लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो सब कुछ जब बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव सिचुएशन खड़ी हो गई, तो द्रौपदी ने भगवान को अनकंडीशनल, हाँ, बिना किसी शर्त समर्पण किया और भगवान से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरे जो शील है, जो मेरी लज्जा है, उसकी रक्षा कीजिए। और भगवान वस्त्र में प्रवेश करके उनकी शील भंग होने से बचाया, उनकी रक्षा की, उनकी मर्यादा की रक्षा की भगवान ने, है ना। तो जब तक हमें होप रहेगी, हम इधर उधर भागते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे, कोई ना कोई तरीका, कुछ ना कुछ उपाय हम लगाते रहेंगे हम, है ना। जैसे जो सारे ये ज्योतिषी हैं, इनका धंधा ही इस पे चल रहा है कि लोग जाते हैं और लोग बोलते हैं जी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका उपाय बताइए, तो वो कुछ उपाय बताएगा कि आप काले कुत्ते को दूध पिलाओ या मछलियों को आटा खिलाओ, ये करो वो करो। हाँ, वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ बोलेगा कि तेल दान करो, ये करो वो करो। गाय को रोटी खिलाओ, है ना। गाय को तो रोटी खैर वैसे खिलाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। बिकॉज गुरु गो ब्राह्मण हिताय च, बिकॉज कृष्णा जो है वो गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम गाय की सेवा हमें करनी चाहिए। लेकिन किसी उपाय के रूप में गो सेवा करना, वो इतनी अच्छी बात नहीं है। गाय की सेवा चलो आपने की, किसी भी तरीके से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जो लाभ है वो संकल्प पर आधारित होता है, संकल्प पर निर्भर करता है। आप जिस संकल्प से कोई कार्य करते हो तो भगवान उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो अगर हम भौतिक लाभ की इच्छा से गो सेवा करेंगे तो हमें भौतिक लाभ मिलेंगे, लेकिन अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो डेफिनेटली भगवान हमारी हेल्प करेंगे और हमें आध्यात्मिक प्रगति हमें प्राप्त होगी, हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनेंगे, विकसित होंगे हम। हमें पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो तो आप गुरु की शरण लो, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, भौतिक या आध्यात्मिक, आपको गुरु की शरण लेना चाहिए, है ना। आपको गुरु के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपकी भौतिक प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन देगा और आपकी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स हैं, गुरु उसका भी आपको समाधान देगा। और गुरु आपको इस तरह से सेवा में लगाएगा कि आप भौतिक जीवन यापन भी कर सको बिना विचलित हुए और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति भी कर सको, आप कृष्ण भक्ति में आगे भी बढ़ सको। तो ये पहली क्वालिफिकेशन है, जब तक हम इस भौतिक संसार से कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते रहेंगे तब तक हमें हम गुरु की या कृष्ण की शरण नहीं ले पाएंगे हम, अगर शरण ले भी ली तो पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसीलिए हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या। बहुत सारे लोग तो ये सोच ही नहीं पाते कि वो दुखी हैं, वो सोचते हैं कि हम सुखी हैं, बट बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ, बात खत्म हो जाती है। वो अलग बात है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता हूँ, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। माइंड हमें ये सिग्नल दे देता है कि चलो देखो ये तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम आते रहेंगी, सोल्यूशन करते रहो, ऐसे जीवन बीत जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये दावाग्नि के समान है, ये जंगल की आग है भैया, इसको आप बाल्टियों में पानी जितना मर्जी लेके आओ, आप डालते रहो, आप नहीं बुझा सकते। जो दावाग्नि है उसको मैन मेड एफर्ट से नहीं बुझाया जा सकता। अगर जंगल में आग लग जाए तो उस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बारिश हो जाए। तो हम में से हर व्यक्ति दावाग्नि में घिरा हुआ है और हम लोग झुलस रहे हैं इस दावाग्नि में, लगातार प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं हम लोग, कुछ बाहर निकलने का उपाय नहीं हम लोगों को दिख रहा है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हम दावाग्नि में घिरे हुए हैं, तब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, और जो गुरु है, गुरु के पास जाना मतलब गुरु की कृपा प्राप्त करने का मतलब है कि अगर हम गुरु के पास जाएंगे तो जो दावाग्नि है जो हमें झुलसा रही है लगातार, हमें लगातार प्रॉब्लम्स में हमें फंसा रही है, वो गुरु की कृपा से वो दावाग्नि शांत हो जाएगी, है ना। हम लोग प्रेयर भी करते हैं ना सुबह, संसार दावानल लीडलोका, हाँ, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, कि ये जो संसार है दावानल के समान है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, इस बात को समझो। और फिर क्या करो कि जो गुरु कृपा रूपी जो वर्षा है, हाँ, उसकी शरण ले लो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो ये दावाग्नि कहाँ से आ रही है, अब ये जो संसार जो दावानल है, ये आग कैसे लगी आग, तो ये आग अपने आप लग गई, कुछ कारण नहीं था। जैसे एक बार एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि जैसे जो बांस के पेड़ होते हैं ना, जब वो छोटे छोटे पौधे होते हैं तो बहुत कोमल कोमल होते हैं, वो आपस में टकराते भी रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, सब बढ़िया चलता रहता है। धीरे धीरे जब वो उग थोड़ा से बड़े हो जाते हैं और तो वो सख्त हो जाते हैं, हाँ, फिर हवा चलती है तो आपस में टकराते हैं, लेकिन इस बार वो इतनी जोर से टकराते हैं आपस में कि उनके घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है, जंगल में आग लग जाती है बांस के आपस में टकराने से। कोई पूछेगा कैसे टकरा गए, क्या हुआ, उसका आप कुछ भी लॉजिक नहीं लगा सकते, बस हवा चली, बांस आपस में टकराए, घर्षण से आग लग गई और पूरा जो जंगल है उसको भस्म कर दिया। इसी प्रकार इस संसार में आप देखो, बैठे बिठाए आपस में लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, और तुमने मुझे नमस्ते नहीं की, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें वो करना चाहिए था, बस इसी चक्कर में सारे लोग लगे रहते हैं। हम लोग अपने रिश्तेदारों से कितने आसक्त होते हैं, लेकिन अगर आप देखो रिश्तेदार हमें प्रॉब्लम ज़्यादा देते हैं, सुख कम देते हैं। रिश्तेदार का मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है चारों ओर से, मतलब बहुत इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मिलना चाहिए समय समय पर, सुख दुख में शामिल हो और सम्मान दो। अगर आपने सम्मान दिया और किसी दूसरे को ज़्यादा सम्मान दिया तो पिछला व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, और इसी चक्कर में पूरी रिश्तेदारी के अंदर सारा जो है टाइम खत्म हो जाता है ना। सो ये जो रिश्तेदारी हैं, जो घर बार, ये पत्नी बीवी बच्चे बंधु बांधव फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ये सब प्रभुपाद कह रहे हैं चरम रोग है। सो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, मनुष्य प्रायः चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है, और वो ये सोचता है कि वो अपने फैमिली को बचा लेगा डेथ से, या उसकी फैमिली उसको डेथ से बचा लेगी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई किसी को मरने से नहीं बचा पाया। लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से, लाइफ इंश्योरेंस लेने से हम मृत्यु से बच जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हो, उसका पर्पज़ है चलो अचानक जो अर्निंग मेंबर है अचानक डेथ हो जाए तो एकदम से फैमिली सड़क पे नहीं आ जाए, चलो ले लिया। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना भी चाहिए कि आजकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हमें मृत्यु से बचा लेगी। मृत्यु से नहीं बचा सकती ये, आपको एक फाइनेंशियल, आप परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन मृत्यु से नहीं बचा पाएगी ये चीज़। और अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट था, अर्जुन इस बात को समझ गया था, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उलझनों का कारण है। और इसी बात के चलते कि अर्जुन अपने परिजनों को की रक्षा करना चाह रहा था मृत्यु से, यही उसकी उलझन का कारण था। अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले, तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति, आगे हम सेकंड चैप्टर में ही भगवान बताएंगे हाँ अर्जुन को कि मृत्यु से जो धीर व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु निश्चित है, हर व्यक्ति हर वस्तु नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये जो शरीर है, जो पांच स्थूल और तीन सूक्ष्म पदार्थ से बना है, ये नष्ट होना इसका निश्चित है। इसमें इसको कुछ भी, कोई भी को लेप लगा के, कुछ भी खिला पिला के, कुछ भी करके इसको रोक नहीं सकते। और शास्त्र में बोला है ऐसा घर है, इसको हम बनाए जा रहे हैं और लास्ट में इसको आग लगानी पड़ेगी। आप देख लो, हम शरीर की कितनी भी रक्षा करें, लास्ट में इसको आग लगानी पड़ती है ना। ये सातवें श्लोक में अर्जुन जो है, अर्जुन अपनी अपनी दुर्बलता को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और अर्जुन जो है वो कृष्ण को गुरु स्वीकार कर रहा है। हाँ, वो बोल रहा है कि आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं इससे पहले तक आप देखें, कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोला कि धर्मस्य सूक्ष्मा गति, महाभारत 3.198.2, हाँ, कि अर्जुन इस बात को समझ गया कि धर्म की जो गति है, धर्म बहुत ही सूक्ष्म है, इसको समझ पाना, इसको अपना जीवन में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम एक गुरु की शरण ले लें। हाँ, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम गुरु की शरण लें, अदरवाइज जो धर्म इतना सूक्ष्म है कि समझ ही नहीं सकते। हाँ, इसीलिए कहा गया है ना, महाजनो येन गता स पंथा, कि हम समझ ही नहीं सकते। शास्त्र भी पढ़ लिए, चलो किसी ने, कोई बोलेगा देखो शास्त्रों में तो सब लिखा है, शास्त्र पढ़ लिए तो फिर कैसे, मतलब तब भी धर्म समझ नहीं आ रहा। तो धर्म जो है एक्चुअली में समझ नहीं आएगा, क्योंकि धर्म जो है वो महाजनों के, जो महान लोग हैं, जो महान भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में छिपा हुआ है। हाँ, और जिस प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसा वो आचरण कर रहे हैं, जैसा वो लोगों को जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, अगर उसका पालन करें तो धर्म को समझा जा सकता है। अदरवाइज धर्म को समझना मतलब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। इसलिए अगर हम धर्म को जानना चाहते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें बहुत ही गंभीरता से गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरु की शरण लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने चलो एक गुरु बना लिया बाकी सब गए भाड़ में। गुरु की शरण लेने का मतलब है कि जो गुरु से जो पूर्ववर्ती गुरु हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी भी शरण लेना, और जो गुरु ने गुरु के आगे जो शिष्य हैं, जो आपके गुरु भाई गुरु बहने हैं, उनकी भी शरण लेना है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ, कई ऐसे डिवोटीज भी हैं इस कौन में जो सिर्फ गुरु को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने गुरु भाइयों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो वो भक्त हैं, मान लिया भक्त हैं, लेकिन और वो भक्ति में आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि गुरु की शरण ले रखी है, लेकिन बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर पाएंगे। उनकी प्रगति होगी लेकिन धीरे धीरे होगी। क्यों? क्योंकि गुरु से आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध हो, गुरु जो हैं उनसे आप हर 5 मिनट में बात नहीं कर सकते, रोजाना आप बात नहीं कर सकते। हमें गुरु की शरण लेने का मतलब है कि गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों की शरण लेना, और साथ में जो गुरु के आगे शिष्य हैं उनको भी सम्मान देना, उनके साथ 6 प्रकार से संबंध बनाना, गुह्यम् आख्याति प्रचेति। हाँ, उनके साथ संबंध बनाना और उनके साथ मिलकर सेवा करना। तो अगर हम मिलकर आपस में गुरु भाई गुरु बहनें मिलकर अगर हम सेवा करेंगे, और गुरु भाई गुरु बहन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने गुरु के शिष्यों से, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हैं और सभी फुली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने आगे कई शिष्य बनाए हैं। तो अपने गुरु के गुरु भाइयों, जो आपके गुरु के गुरु भाई हैं, उनको भी पूरा सम्मान देना है, उनसे शिक्षा लेनी है, और जो आपके गुरु के गुरु भाई हैं उनके जो शिष्य हैं उनसे भी अच्छे से व्यवहार करना है। और अगर उनके पास नॉलेज है, अगर वो उनमें सामर्थ्य है मार्गदर्शन देने का, तो क्यों नहीं मार्गदर्शन लिया जाए, है ना। हमें संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं, तृणादपि सुनिश्चय तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामार्थेन कीर्तने सदारी। अगर आप सदा हरि का कीर्तन करना चाहते हो तो अमानि नामार्थेन सम्मान मत लो और सम्मान दो। सम्मान देने का मतलब ये नहीं है दंडवत किए आगे बढ़ गए, सम्मान देने का मतलब है कि आप मार्गदर्शन लो उनकी। सबसे आप किसी भी डिवोटी से पूछ लेना, सीनियर डिवोटी से, सबसे ज्यादा प्रसन्नता उनको तब होती है जब कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है। प्रणाम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी किसी डिवोटी को वाकई में खुश करना चाहते हो तो आप उनसे जिज्ञासा करो, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से आपकी विनम्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप स्वयं को कम इंटेलिजेंट और जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हो, है ना। उससे विनम्रता भी बढ़ेगी। और जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो सीनियर डिवोटीज का मतलब ही ये है कि उनको नॉलेज है, उन्होंने भक्ति कैसे करनी है उनको पूरी नॉलेज है, और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्प लेंगे तो बहुत खुश होंगे वो, है ना। हमें सिर्फ अपने गुरु से ही संबंध रखे वो अच्छी बात नहीं है। हमें अपने गुरु भाइयों से और अपने गुरु के जो गुरु भाइयाँ उनसे और उनके शिष्यों से हमें अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, और अगर कोई मार्गदर्शन दे सकता है हमें बहुत ही खुशी से उनका मार्गदर्शन, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमारा आइडिया ये है, हमारा उद्देश्य है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। भक्ति में आगे बढ़ने में जो भी हमारी सहायता करेगा, जहाँ से भी हमें सहायता मिलेगी, हमें बिना किसी संकोच, निसंकोच होके हमें वो सहायता लेनी चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए कि हम भी आगे लोगों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, अमार आज्ञा है गुरु है तारे देश, कि आप गुरु बनो। गुरु आप तब बनोगे जब आप बहुत सारे भक्तों का संग करोगे, उनसे मार्गदर्शन लोगे, अलग अलग बातों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से समझोगे, और फिर उसको अपने जीवन में उतार के आपको आपका एक दृष्टिकोण बनेगा, और उस दृष्टिकोण को आप लोगों को समझाओ कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो दुर्बल है, वो कृपण है, वो कमज़ोर है, वो कंफ्यूज्ड है, हाँ, और वो भगवान की शरण लेने की उसने निश्चित कर लिया कि मुझे अब भगवान की शरण लेनी है, और वो भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है कृष्ण को कि आप प्लीज़ मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, और अब आप मुझे बताएं। तो कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं भैया, तुम मतलब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तुम उस बात को काट दोगे, क्योंकि तुम तो अपने आप को बहुत सुपर इंटेलिजेंट समझ रहे हो, तो मैं कैसे बोलूं। तो अर्जुन ने बोला, शिष्यस्ते हम, मैं आपका स्टूडेंट बन चुका हूँ, अब मैं आपसे जिज्ञासा तो जरूर करूंगा, लेकिन आपकी बात को मैं अब काटूंगा नहीं। मैं समझ गया हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि मुझे नॉलेज नहीं है, अब आप प्लीज़ मुझे आप जैसा भी आपको लगे कि मेरे लिए जो भी श्रेष्ठ है, हाँ, स्यान् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे, आप आपको जो भी लगे कि जो मेरे लिए जो श्रेष्ठ है, आप प्लीज़ आप मुझे बताइए, है ना। लेकिन कृष्णा कह रहे हैं, भैया कैसे बताऊं, तुम तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि तुम हो तो क्षत्रिया लेकिन भीख मांग के गुजारा करोगे, तो फिर मेरे बोलने का फायदा क्या है। तो अर्जुन ने बोला कि कार्पण्य दोषो, मैंने जो मेरा क्षत्रिय सुलभ जो साहस है, जो वीर्य है, मैं उसका त्याग कर रहा हूँ, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ूँ। आप प्लीज़, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, अब आप मेरे से अगर मेरे से बिल्कुल वो बात बताइए जो मेरे फायदे की है, चाहे वो कड़वी भी है तो भी आप बताने से परहेज मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सक्षम हो बताने के लिए। अभी तक मैं तैयार नहीं हो रहा था, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, अब बाय योर मर्सी अब मैं समझ गया हूँ कि आप मेरा कल्याण कर सकते हैं। सो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ये जो प्रॉब्लम है, इतनी विकट समस्या है कि लड़ूं तो भी दिक्कत है, नहीं लड़ूं तो भी दिक्कत है, भीख मांगूं तो भी दिक्कत है, नहीं मांगूं तो भी दिक्कत है, मैं आखिर करूं तो करूं क्या। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं तो मुझे द्रौपदी दिखाई देती है, जिसको हमने बोला कि हम तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे, और आगे देखता हूँ तो आगे मुझे भीष्मा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब दिखते हैं, तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सो ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट है अर्जुन की लाइफ में, और हमारी लाइफ में भी ये टर्निंग पॉइंट आ सकता है अगर ज़रूरत है कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हमें प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का कोई भी मटेरियल भौतिक सॉल्यूशन समाधान नहीं है। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये इसका मतलब है कि हम नेशनल हाईवे पर, भक्ति के नेशनल हाईवे पर हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली है, अब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और जितना हम अपने आप को मूर्ख समझते रहेंगे उतना ही हम ज़्यादा नॉलेज दूसरों से, दूसरे भक्तों से ले पाएंगे, है ना। और नॉलेज लेने के लिए जो योग्यता है वो विनम्रता की योग्यता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, एब्जॉर्ब करने की शक्ति स्पंज में होती है, पत्थर में नहीं होती। स्पंज को पानी पर रखते ही वो पानी सोख लेता है, पत्थर को पानी में डुबा के रखो सैकड़ों वर्षों तक, तो बाहर निकालो फिर वैसे का वैसा ही मिलेगा। अगर हम बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे, अगर हम तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने का मतलब है पत्थर बन गए हम। अगर हम अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझेंगे तो हम दूसरों से नॉलेज नहीं ले पाएंगे, दूसरों की बात नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आत्म कल्याण की बात नहीं समझ पाएंगे। अगर हम स्पंज की तरह बिहेव करेंगे, बहुत ही विनम्र रहेंगे, अपने आप को मूर्ख समझेंगे, जैसे रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के उदाहरण से हम देख सकते हैं, तो हम बहुत ही तेजी से, क्विकली, हाँ, हम नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे, भक्ति संबंधी बातें हम पकड़ पाएंगे और उसको अपने जीवन में कैसे उतारने समझ पाएंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा।